الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما तो पीर के दिन जो हमारी क्लास होती है शाम के वक्त, उसमें हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ रहे हैं और हमारी जो रेफरेंस बुक है, बल्कि हमारी जो कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की मआरिफुल कुरआन और उसकी जिल्द नंबर 3 के अंदर सूरह मायदा मौजूद है। तो आज जो आयत तिलावत की गई वो सूरह मायदा की 5वीं आयत है। अब तक हम 4 आयतों का बयान पढ़ करके उसके ऊपर डिस्कशन करके बहस करके मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। अल्लाह ताला उस इल्म को हमारे लिए इल्म नाफे बनाए और उसके मुताबिक अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। पिछली क्लास में चौथी आयत का जो मजमून था वो शिकार से मुताल्लिक था कि शिकार में से क्या चीज़ हलाल है और क्या उसकी शराइत है। और आज जो आयत तिलावत की गई अलयौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आज के दिन अलयौम कौन सा दिन था? ये अरफात का दिन था, ठीक है। तो हज्जतुल विदा 10 हिजरी का यौम अरफा यानी 9 जिलहज्जा का दिन अलयौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, हलाल हुई तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लाम लिए कुम जमीर प्रोनाउन जो के जमा मुखातब जमा मुतकल्लिम सॉरी जमा मुखातब, ठीक है, या जमा हाजिर उसकी तरफ पॉइंट करता है। तुम्हारे लिए अत्तय्यिबात तय्यब चीजें पाकीज़ा चीजें, ठीक है, उर्दू में भी हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। व तआम और खाना अल्लदीना यानी उन लोगों का खाना, क्योंकि तमाम यहाँ पर मुदाफ बन रहा है, ये भी एक ग्रामर की टर्म है इंशाल्लाह, जो लोग कुरान एक अरबिक की क्लास में हैं या जो पहले ग्रामर पढ़ चुके हैं वो इन चीज़ों से फेमिलियर हैं और जो अभी पढ़ रहे हैं वो होते चले जाएंगे। तो तआमू जो है ये मुदाफ है, मुदाफ इलैही क्या है, इसके बाद का जुमला, पूरा का पूरा जुमला। अल्लदीना वो लोग जो यानी उन लोगों का जो ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए, ठीक है, अता या अति फेल होता है और इसके अंदर ये मजहूल का सीगा जमा के साथ, ऊतु जो दिए गए, अल किताबा यानी किताब, कौन सी किताब? आसमानी किताब है, ठीक है, यानी तौरात और इंजील जो के दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में सबसे कम मस्ख की गई हैं, ठीक है, इंसानों ने सबसे कम उनको मस्ख किया तौरात और इंजील को, जबकि दूसरी किताबों को बहुत ज्यादा मस्ख करके पता नहीं क्या शक्ल उनकी बना दी, ठीक है, जैसे रामायण वगैरह, पता नहीं ये भी कोई किसी नबी के ऊपर अगर नाजिल हुई थी लेकिन उनका तो बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना वो हुलिया ही बिगाड़ दिया, तौरात और इंजील का कम किया, तो इस वजह से उनको भी हमारे दीन में किताब कहा गया, उतुल किताब जो कि किताब दिए गए। तो तआमु खाना उन लोगों का जो कि किताब दिए गए, हिल्लुल लकुम तुम्हारे लिए हलाल है, ठीक है, हिल्लुल लकुम तुम्हारे लिए हलाल है, लकुम वही पीछे जो आया था। व तआमकुम और तुम्हारा खाना लहुम, उनके लिए हलाल है, ठीक है, तुम्हारा खाना उनको हलाल है। अब वो कौन सा तुमसे पूछ करके खाते हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इल्म के लिए बताया जा रहा है कि वो नहीं, ये इंटरचेंजेबली, ठीक है, तुम्हारा उनके लिए हलाल है, उनका तुम्हारे लिए हलाल है। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती, और मुहसनात यानी पाक दामन। अच्छा एक मिनट जी, जरा बोल दीजिएगा। अच्छा वल मुहसनातु, और पाक दामन, मुहसनात यानी पाक दामन, ये सौत के साथ है, मुहसिन वो सीन के साथ होता है, एहसान सीन के साथ होता है, ये सौत के साथ है। तो पाक दामन मिनल मुमिनाती यानी उन औरतों में से पाक दामन जो के नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करती है, ठीक है ना, वो कौन होती हैं, उनको क्या कहते हैं, मुमिनात यानी ईमान वालियां, एतमाद करने वालियां, किस पर एतमाद करने वालियां, नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करने वालियां। वल मुहसनातु, और पाक दामन मिनल्लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, उन लोगों में से कि जो कि किताब दिए गए तुमसे पहले, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सहाबाए कराम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई यानी अल-कुरान मजीद, ठीक है, उससे पहले जो लोग किताब दिए गए तौरात और इंजील वाले, तो उनकी भी पाक दामन औरतें। तो ये हिल्लुल लकुम वाला जो है ना, या हिल्लुल लहुम, ठीक है, ये बल्कि हिल्लुल लकुम, ठीक है, तो ये आगे चल रहा है इसके ऊपर कि उन ये औरतें भी जो है वो हलाल हैं, कौन, अल मुमिनात और अहले किताब की औरतें, मिन कबलिकुम, और औरतें वैसे तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं ना, औरतें नहीं, मुहसनात का लफ्ज है यहाँ पर, ठीक है ना, औरतों का लफ्ज वो नहीं है, यानी खाली जो है वो निसा, उनकी निसा तुम्हारे लिए हलाल है, नहीं, मुहसनात, ठीक है, तो मुहसनात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो किसी वजह से इस्तेमाल हुआ है ना, ऐसे भी थोड़ी खामो खाम इस्तेमाल होती है, ठीक है, वरना औरत के लिए तो निसा का लफ्ज होता है, सूरह निसा जो है वो इससे पीछे गुजरी भी है पूरी की पूरी कुरान मजीद की। तो मुहसनात मिनल मुमिनात वल मुहसनात मिनल लदीन उतुल किताब मिन कबलकुम इदा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम दो उनको, ठीक है, यानी ईमान वाली औरतों से जब तुम निकाह करो, उनको उजूरहुन्ना, उनकी उजरत दो, उजरत किसको कहते हैं निकाह के अंदर, मेहर को कहते हैं, ठीक है, जब दो उनको मेहर उनके कैद में यानी उनके पोजेशन के अंदर तुम मेहर उनको दो यानी बाकायदा निकाह करो उनके साथ, ठीक है, मोहसिनीना कैद में लाने को यानी उनको जो है उनके साथ जो है वो अच्छी पाकीजा जिंदगी गुजारने को, गैरा मुसाफिहीना, ना ये कि तुम अपनी ख्वाहिशात पूरी करने को, ठीक है, ये इसके आगे तफसीर इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे, काफी सारी है इसकी, तो बहुत ज्यादा डिटेल है और है भी बहुत अहम, आज के दौर के अंदर बहुत ही ज्यादा इसकी अहमियत है, ये वाली आयत जो है ना वो समझने हालात हाजरा की आयत है, बहुत सी और भी होती हैं और जाहिर है पूरा कुरान मजीद ही हालात हाजरा के लिए है, क्योंकि किस्से कहानी की तो ये किताब है नहीं, ये तो हिदायत की किताब है, और हिदायत कब मिलेगी, जब हालात हाजरा के बारे में हमें बताया जाएगा, ठीक है, लेकिन हालात हाजरा का लफ्ज जो है वो अमूमी तौर पर वर्ल्ड इवेंट्स या वर्ल्ड सिचुएशन के बारे में इस्तेमाल होता है, वरना हकीकत में हालात हाजरा का मतलब क्या है, हाजिर के हालात यानी मेरे हालात, मेरी जात के हालात, मेरे खानदान के हालात, मेरे माहौल मुआशरे के हालात, मेरे मुल्क के हालात हैं, ये सब का सब हालत है, हालात हाजरा है, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पर ये लफ्ज जरा वर्ल्ड इवेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस आयत में तो बड़ा जबरदस्त किस्म का रेफरेंस है इन वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर, फरमाते हैं गैर मुसाफिहीना वला मुत्तखिजी अखदान, और ना छुपी आशनाई करने को, यानी छुपी आशनाई पकड़ने वाला, छुपी आशनाई जो है वो लेने वाला, इस तरह से है, ठीक है, वमई यकफुर बिल ईमान, वमई यकफुर बिल ईमान, और जिसने इनकार किया किस बात से? ईमान से तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कि हम सब ईमान वाले हैं। ठीक है, ईमान का मतलब पूछते हैं तो जवाब मिलता है अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान। ठीक है, ये जवाब मिलता है। ठीक है, लेकिन हकीकत क्या है ईमान की? पूछे बगैर आगे चलते हैं कि हकीकत ईमान की ये है कि नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद। ठीक है, कि एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम बल्कि एक ही है सब कुछ, उसी में सब कुछ शामिल हो जाता है, कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, इस पर एतमाद कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और जाहिर सी बात है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियली क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं, इस वजह से वो कोई गलत बात कह ही नहीं सकते। जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने बताई, जो उन्होंने हुक्म दिया, ये वही है जो अल्लाह ने हमें दिया। राइट, ये वही है जो अल्लाह ने हमें दिया, कोई गड़बड़ नहीं है इसके अंदर, कोई इसके अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग दरमियान में नहीं हो गई, कोई इसके अंदर मैनिपुलेशन दरमियान में नहीं हो गई, बल्कि अल्लाह का ये हुक्म है। ठीक है, तो इसको ईमान कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान, पर एतमाद। तो जिसने उसका इनकार किया, ठीक है, चाहे वो कुल्ली तौर पर इनकार किया, चाहे वो जुज़ई तौर पर इनकार किया। कुल्ली तौर पर इनकार का मतलब क्या होता है? नहीं, नाउज बिल्ला ये कह देना नहीं ये नहीं अल्लाह के रसूल। जुज़ई तौर पर इनकार का क्या मतलब होता है? कि हैं तो अल्लाह के रसूल, लेकिन ये बात जो है ना ठीक नहीं करी उन्होंने, नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला, सुम्मा नाउज बिल्ला। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए इस सोच से और इसको जुबान से अदा कर देने से, तो बिल्कुल ही हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है? फकत हबिता, अल्लाह ताला फरमाते हैं पस उसने जो है ना वो अपने आमाल को जाया कर दिया। हबिता अमलु, सारे आमाल उसके जीरो हो गए, मल्टीप्लाई बाय जीरो। ठीक है, वह हुआ फिल आखिरत, और आखिरत में वो मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हो गया, जिसने नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद का इनकार कर दिया। चाहे 1% क्यों ना इनकार किया हो, चाहे 0.01% क्यों ना इनकार किया हो, उसने अपने आमाल को खत्म कर दिया, जाया कर दिया। जितनी नमाजें पढ़ी थी, जितनी जो है वो टोपियां कराई थी या पहनी थी, राइट, और जितने जो है वो हज उमरे किए थे, और जितने जो है सदका खैरात दिए थे, और जितने जो है वो और दूसरे काम किए थे, मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। ठीक है, और आखिरत में फिर ठेंगा भी नहीं मिलेगा। उर्दू का मुहावरा वो भी वहां पे गलत हो जाता है कि ठेंगा भी नहीं मिलेगा, वरना तो हम कहते हैं ना ठेंगा मिलेगा। ठीक है, ये है इसका मफहूम। ना तो हम सब की हिफाजत फरमाए। किसी को कोई सवाल पूछना है तर्जुमे से मुतालिक, पूछ लीजिएगा चैट विंडो पे लिख के। आगे हम खुलासा तफसीर पढ़ते हैं। अच्छा चले, हम सवाल कर लेते हैं अगर आप नहीं कर रहे, कि क्या इसकी रेलेवेंस है भाई हालात हाजरा के साथ आगे पढ़ने से पहले, क्योंकि अभी तो बहुत तफसीर है इसके अंदर, पता नहीं कितने हफ्ते निकल जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। तो उससे पहले अगर हम आपसे पूछें कि क्या इसकी इस आयत की जो है ना वो वर्ल्ड इवेंट्स के साथ इसकी क्या रेलेवेंस है, या क्या इसकी कोई एक लफ्ज में अगर जवाब देना चाहे या दो लफ्जों में जवाब देना चाहे, है तो दो लफ्जों का जवाब बस। क्या है भाई? इल्हाद, एक लफ्ज में इसका जवाब, इसका जवाब जो है वो इल्हाद से भी दिया जा सकता है, और दो लफ्जों में इसका जवाब जो है वो अंग्रेजी के अल्फाज एब्राहमिक रिलीजन्स, राइट, एब्राहमिक रिलीजन्स। ठीक है, ये उससे भी इसका दिया जा सकता है। ठीक है, अवॉइड मिस यूज ऑफ वुमेन, ये आपसे कौन पूछ रहा है? इसकी तफसीर क्या है? मर्द और औरत का इख्तलात, नहीं, मर्द औरत का इख्तलात भी नहीं, वर्ल्ड इवेंट्स तो कुछ और होते हैं ना भाई, ठीक है ना, ये तो समझना है, मुआशरे के अखलाकी हालात और ये सब चीज़ें होती हैं जो आप कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको एब्राहमिक रिलीजन्स, ठीक है, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर जबरदस्त तरीके से पुश हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 19 है, यानी उतुल किताब, उतुल किताब कौन होते हैं? ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, यहूदो नसारा, वही तीन ही है एब्राहमिक रिलीजन, इस्लाम और यहूद नसारा। तो भाई जब शादी तक करने की इजाजत है उनकी औरतों से और उनका जो है वो जबीहा भी खाने की इजाजत है, तो फिर तो बहुत करीब यानी बड़ी अच्छी दोस्ती करने की भी इजाजत होनी चाहिए, ठीक है ना। दोस्ती में फिर कौन सी, ये तो बीवी तो और बड़ी दोस्त होती है, दोस्त से भी बढ़कर होती है बीवी, ठीक है। तो फिर जो है वो दोस्ती कैसे नहीं हो सकती उनके साथ, जब शादी हो सकती है उनके साथ तो दोस्ती कैसे नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब शादी तो किसी किसी को नसीब होगी ना गोरी के साथ, राइट, लेकिन दोस्ती जो है वो तो चैट चैट के ऊपर हो जाती है, राइट, व्हाट्सएप के ऊपर हो जाती है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ईमेल, सब कुछ मौजूद है दोस्तियां करने के लिए, ठीक है। शादी करना तो फिर मुश्किल काम है उधर सात समंदर पार से, ठीक है। आजकल तो खैर वो भी हो जाता है, लेकिन दोस्ती तो बहुत आसान है ना। तो उसके ऊपर फिर शैतान कहते हैं देखो तुम्हारे अपने कुरान के अंदर लिखा है जिसको तुम मानते हो, अल्लाह की किताब मानते हो, और ये है ना सब कुछ जायज, सब ठीक है भाई, सब चलता है, तुम्हारे मौलवियों जो है ना ये तो है ही ऐसे ही, उनको तो बस हर चीज में पख निकालने की जरूरत है, पख निकालने की आदत है, जबकि तो कुरान अजीम शान में लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, ठीक है। खुलासा तफसीर, तो खुलासे तफसीर में हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको बहुत सारे लोग भी मौलवी साहब ही कहते हैं। अच्छा, दारुल उलूम देवबंद के बारे में अभी पढ़ा कि किसी आलम दीन का बयान था, उसका वो एक्सर्प्ट था कि फरमाते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में जो है ना वो सबको मौलवी साहब कहते हैं, किसी को लंबे चौड़े ऊंचे नीचे अलकाब वगैरह कोई नहीं होते थे, सब मौलवी साहब है ना, ये मौलवी साहब, ये मौलवी साहब, ये अच्छा एक बड़े मौलवी साहब थे बस, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह, उनको बड़े मौलवी साहब कहते थे, बाकी हजरत थानवी रहमतुल्लाह भी मौलवी साहब, हजरत जो है वो मुफ्ती शफी भी मौलवी साहब, हजरत जो है वो लाहौरी रहमतुल्लाह नहीं, तो जो भी सारे मौलवी साहब बस, ठीक है। खुलासे तफसीर यानी इज्जत उनकी उनके इल्म की और उनके तकवा की वजह से होती थी, उनके अलकाबात की वजह से उनकी इज्जत नहीं होती थी, ठीक है। हमें तो ना तो इज्जत करनी आती है ना कुछ और आता है, तो इस वजह से हम अलकाबात से गुजारा करते हैं, अलकाबात से गुजारा करते हैं, क्योंकि इज्जत उज्जत करनी भी थोड़ी होती है, खाली बोलना होता है। अच्छा, क्या फरमाते हैं, आजकल भी ऐसा होता है कि कुछ लोग जब कोई हदीस सुनते हैं जो उनकी अकल के मुताबिक नहीं होती तो फौरन पूछते हैं कि क्या ये हदीस सही है, उनकी अकल के मुताबिक नहीं होती तो फौरन पूछते हैं कि क्या ये हदीस सही है, आप बता दिया करें कि हाँ ये सही है अगर है, और अगर सही नहीं है तो बता दिया करें कि ये हसन है या लिजाती ही है या लिगैरी ही है या ज़ईफ है या क्या है, ठीक है। तो वजह उसकी यही है ना कि जो सुपरफिशियल हाई लेवल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, और इंटरनेट के ऊपर आपको पता है सब कुछ अवेलेबल है, जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं और आपके पास बगैर बुलाए वो आ भी जाते हैं, सोलिसिटेड भी आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो बहुत आम हो गई हैं। लेकिन इस मौके के ऊपर जो पढ़े लिखे सही मानों में जिन्होंने जो तहकीकी उलमा होते हैं तो उनको भी इस मौजूदा हालात के मुताबिक फिर लोगों के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। यानी आप अज्यूम नहीं कर सकते कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ही कोरा होगा, वो बिल्कुल ही जीरो होगा, उसको तो अलिफ बा का भी नहीं पता होगा, ये अजम्पशन इस दौर के अंदर नहीं चलती, ठीक है ना। तो फिर उसके हिसाब से अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मिसाल के तौर पर आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो मुफ्ती हजरात दारुल इफ्ता से फतवा लिखते थे ना, तो वो बस जवाब दे देते थे, 2 लाइन 4 लाइन जो भी उनका जवाब देना होता दे देते थे, कोई कोई उसके रेफरेंसेस नहीं लिखते थे, ठीक है। फतवे के अंदर जो है वो उसकी तखरीज ही होती थी कि भाई ये इसकी दलील है, यहाँ से हमने इस दलील को लिया है, और फलानी हदीस इसकी दलील है या फलानी आयत इसकी दलील है या फलाना जो है वो फतवे की किताब में से हमने निकाल करके आपको फतवा दिया है, वो तहकीक खुद करते थे, आवाम को थोड़ी बताते थे। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई कि भाई आवाम जो है ना वो कहती है भाई कैसे दलील दें इसकी, कुछ बताएं आगे पीछे कैसे कहाँ कहाँ से आपने जो है वो ये वाला फतवा दिया है, तो बाकायदा दारुल इफ्ताओं ने फतवा भी लिखा और नीचे उसकी पूरी की पूरी तखरीज भी लिखनी शुरू करी, ठीक है। तो भाई अडेप्ट किया ना अपने आप, जरूरत के मुताबिक हालात के मुताबिक जो है वो अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, और जो कर लेता है वही चलता है, और जो नहीं करता तो जाहिर सी बात है आपको पता है कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट जो है वो जो ऑफिस में बैठा हुआ है तो वो कहे कि जी मैंने जो वो लेगेसी एप्लीकेशन जो है वो जिन पे मैं आज से 40 साल पहले काम करता था, तो बस मैं उसी पे काम करता रहूंगा, कोई और चीज नहीं पढ़ूंगा, कोई और चीज जो है मैं सीखूंगा नहीं, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं होना चाहिए, तो फिर वो चलेगा, उसको तो फायर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, या ज्यादा से ज्यादा बस उसको साइड पे कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर फायर नहीं भी किया तो, ठीक है, तो वहां पे तो अडेप्ट करते हैं हालात के मुताबिक। तो भाई दीन में क्यों नहीं अडेप्ट करते, दीन को अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी दीन अडेप्ट करना कि भाई अब हालात और वाकयात के मुताबिक दीन को चेंज कर दो, ये कोई थोड़ी कह रहा है, कोई दीन को नहीं चेंज करो, अपने आप को चेंज करो भाई, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मशाइख जो हैं जो कि अहले हक हैं कर रहे हैं और वो करते ही रहेंगे, अल्लाह ताला ने भी इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है और इनके जरिए से दीन की हिफाजत करवाता है अल्लाह ताला। अच्छा आगे चलें, खुलासे तफसीर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपने मखसूस अंदाज के अंदर तफसीर लिखते हैं इसकी कि आज, ये तो तर्जुमा हो गया ना अल यौम का, यानी वही 9 जिलहज्जा 10 हिजरी। अब ये तफसीरन ब्रैकेट्स के अंदर बैनल तवसैन जो असल लफ्ज है उर्दू का, फरमाते हैं कि तुम पर जैसे दीनी अबदी इनाम हुआ, कि इकमाले दीन से मुशर्रफ किए गए, यानी दीन मुकम्मल हो गया तुम्हारे ऊपर, पीछे जो छा जो चल रहा था शरीयत के अहकामात वो चेंज हो रहे थे, चेंज वो भी अडेप्ट हो रहे थे, वो भी अडेप्ट हो रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे आने के बाद इस दुनिया में, यानी नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा, अब जो है ना वो शरीयत के अहकामात फाइनल हो गए, तो इकमाले दीन ये सारा का सारा पीछे कुरान मजीद के अल्फाज में भी है और तफसीर में भी हम पढ़ चुके हैं, ये दीनी अबदी इनाम हुआ, हमेशा हमेशा के लिए ये इनाम हो गया तुम्हारे ऊपर, इसी तरह क्योंकि अब चेंज नहीं होगा इसके अंदर कुछ भी, इसलिए अबदी, इसी तरह एक मुअतद भी ही दुनियावी अबदी इनाम भी हुआ, मुअतद भी ही यानी उससे रिजल्टेंट, ठीक है, उससे रिजल्टेंट यानी जो दीनी अबदी इनाम होता है तो उसका असर जो है वो दुनियावी इनाम के ऊपर भी पड़ता है, दुनियावी हालात के ऊपर भी पड़ता है, तो दुनियावी अबदी इनाम भी हुआ, वो क्या कि तुम्हारे लिए हलाल चीजें कि इससे पहले हलाल कर दी गई थी हमेशा के लिए हलाल रखी गई, ठीक है, यानी अब उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, यानी कि कभी मनसूख नहीं होती, क्योंकि ये जो आयात हैं ये नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली अहकाम की आखिरी आयात, इनके बाद अहकाम की कोई नई आयत नाजिल नहीं हुई, तो ये एक दुनियावी, क्योंकि खाना पीना जो है ये तो दुनियावी जिंदगी से भी डायरेक्टली ताल्लुक रखता है ना, तो ये हलाल तुम्हारे लिए हलाल चीजें हलाल रखी गई, यानी अब उनको हराम नहीं किया जाएगा, और जो लोग तुमसे पहले आसमानी किताब दिए गए हैं यानी यहूद व नसारा, उनका जबीहा भी तुमको हलाल है, तआमुकुम का तर्जुमा जो है वो जबीहा से किया, ठीक है, तो अब वो कैसे जबीहा, वहां पे तो ताम है, तो ताम का तर्जुमा तो उर्दू जुबान के अंदर खाने से होता है, तो यहाँ पर जो है वो जबीहे से क्यों किया इसका खाना, इसका तर्जुमा, उसकी तफसीर जो है फिर तफसीर में आएगी, ठीक है, जब ही कहते हैं ना कि तर्जुमे से तो कुरान मजीद समझ में नहीं आता, तर्जुमा तो फिर खाना होता ना फिर, ठीक है, तो जबीहा भी तुमको हलाल, और उसका हलाल होना ऐसा ही यकीनी है जैसा तुम्हारा जबीहा उनको हलाल है, ठीक है, यानी उनका उसका हलाल होना ऐसा ही यकीनी। अब देखें ये जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तफसीर करी है ना, ये मामूली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये तफसीर ना होती तो जहन में इश्काल रह जाता कि भाई अल्लाह ताला ने ये जो 3 अल्फाज तआमुकुम हिल्लुन लहुम जो फरमाए हैं, इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पे करने की, ठीक है ना, इसकी क्या जरूरत थी, या क्या क्या अहले किताब कुरान मजीद पढ़ के हलाल हराम का फैसला करेंगे कि अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि भी तुम्हारे लिए क्या हलाल है, वो तो कुरान मजीद को मानते ही नहीं, जब कुरान मजीद को मानते ही नहीं तो कुरान मजीद नाउजुबिल्लाह बात समझाने के लिए उर्दू जुबान के मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए, कुरान मजीद कौन होता है उनको बताने वाला कि उनके लिए क्या हलाल है, उन्होंने तो कुरान मजीद को देखना ही नहीं, ठीक है, तो क्यों फरमाया भाई ये तआमुकुम, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर ये उम्मत के ऊपर जो है ना ये अपने कुरान मजीद के उलूम को खोला, ठीक है, ताकि वो फिर बाकी लोगों के ऊपर खोलें, बाकी लोगों को समझाएं, जैसे कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ मांगी ना कि अल्लाह इनको कुरान मजीद के फहम अता फरमा दे। क्या मतलब कि कुरान मजीद के उलूम जो हैं, उनकी जो तफसील है, उनके जो 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 एप्लीकेशन है, उनके जो असल तफसीली मानी है, वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह के ऊपर खोलेंगे, अल्लाह ताला खोलेंगे, ठीक है ना। वही इब्ने अब्बास रज़ी के ऊपर नाजिल नहीं होगी, इल्हाम इब्ने अब्बास रज़ी के ऊपर नाजिल होगी। इल्हाम कहते हैं इसको, ये वही नहीं होता। और ये गैर नबी के ऊपर भी आता है, जैसे कि नबी के ऊपर भी इल्हाम भी आता है, वही भी आती है, गैर नबी के ऊपर वही नहीं आती, इल्हाम आता है, ठीक है। मक्खी के ऊपर भी इल्हाम आता है, लेकिन यहां पर जैसे इल्हाम की बात हो रही है, वो इल्मी इल्हाम की बात होती है, ठीक है, कुरान मजीद के मानी से मुताल्लिक इल्हाम की बात हो रही है, ठीक है। तो वो फिर अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों के ऊपर ही नाजिल करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात के ऊपर पक्का एतमाद है कि हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उन नेक लोगों में से हैं, उन कुदसी रूहों में से थे कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के मानिफ मारिफ मानी खोले, ठीक है, और चंद अल्फाज में ही दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। वरना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये तीन अल्फाज इतने मुश्किल थे समझाने और समझने कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते इसका, ठीक है। लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया कि उसका हलाल होना ऐसा ही यकीनी है जैसा तुम्हारा ज़बीहा उनको हलाल है, ठीक है। तो और पारसा औरतें भी जो मुसलमान हैं उनको हलाल है, ठीक है, यानी अल मुमिनात नबी अलैहि सल्लम पर एतमाद करने वाली, ठीक है। और जैसा मुसलमान औरतों का हलाल होना यकीनी है, इसी तरह पारसा औरतें यानी मुहसनात उन लोगों में से भी जो तुमसे पहले कुतुबे आसमानी दिए गए हैं, यानी अहले किताब यहूद नसारा में से, ठीक है, तुमको हलाल है जब तुम उनको उनका मुआवजा दे दो, ठीक है, यानी मेहर दोना गो के निकाह की शर्त नहीं है मगर वाजिब है, यानी मेहर के बगैर निकाह हो जाता है लेकिन गुनाहगार होगा, क्योंकि वाजिब छोड़ने के ऊपर गुनाहगार होते हैं, और गुनाह का मतलब क्या होता है जी, पिटाई, ठीक है। तो निकाह तो हो गया, बीवी तो मिल गई, लेकिन पिटाई फिर भी होगी क्योंकि वाजिब को छोड़ दिया, ठीक है। तो जब तुम उनको उनका मुआवजा दे दो, यानी मेहर देना गो शर्त नहीं है मगर वाजिब है, और औरतें मजबूरा जो हलाल की गई हैं, तो इस तरह से कि तुम उनको बीवी बनो, ठीक है, यानी बीवी बनाने का मतलब क्या होता है, एक तो गवाहों के सामने निकाह होना, ठीक है, क्योंकि गवाह तो शर्त है ना, सही है, इनके सामने निकाह होना, और निकाह के बाद फिर क्या होता है, फिर वो बेगम साहिबा बन जाती है, वो क्या बन जाती है, दी लॉ बन जाती है, दी लॉ यानी उनको तुम दी लॉ बना लो। दी लॉ वाला लतीफा तो पता है ना कि देयर इज अ ब्रदर इन लॉ, देयर इज अ सिस्टर इन लॉ, देयर इज अ मदर इन लॉ, देयर इज अ फादर इन लॉ, देयर इज अ सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, बट देयर इज नो वाइफ इन लॉ बिकॉज शी इज दी लॉ, ठीक है, तो दी लॉ बना लो उनको अपना, सही है। तो यानी जिम्मेदारियां पूरी उनके अपने ऊपर लाद लो, और उनके ऊपर भी जाहिर है तुम्हारी जिम्मेदारियां लद जाएंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी उनकी जिम्मेदारियां लद जाएंगी, ये है बीवी बनाने का मतलब। यानी निकाह में लाओ जिनकी शर्तें शरा में मालूम हैं, ना तो यानी वही जो निकाह की शर्तें हैं वो किसी और माफूल में देख लेंगे, ना तो ऐलानिया बदकारी करो और ना खुफिया आशनाई करो, ये सब अहकाम शरिया हैं जिन पर ईमान लाना फर्ज है, ठीक है। ये तो तफसीरन हजरत ने लिखा ना, और आगे अल्लाह ताला के अल्फाज का तर्जुमा क्या लिखा कि और जो शख्स ईमान लाने की चीजों के साथ कुफर करेगा, ईमान के साथ कुफर करेगा, क्या मतलब, वही बात जो पीछे हो चुकी, नबी अलैहिस्सलाम पर कामिल एतमाद के साथ या तो कामिलतन कुफर करेगा, उसका इनकार करेगा, या जुजवी तौर पर पार्शियली उसका इनकार करेगा। मसलन अब उसकी तफसीर लिखी जा सकती है, मसलन हलाल कतई की हिल्लत का या हराम कतई की हुरमत का इनकार करे, ठीक है, हलाल कतई की हिल्लत यानी उसका हलाल होना, कतई किस चीज को कहते हैं जो कि एब्सोल्युटली कंफर्म्ड हो, ठीक है। क्या बात कंफर्म उसके बारे में, कि नबी अलैहिस्सलाम ही ने उसको हलाल करार दिया। ये होता है हलाल कतई, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ना हो कि नहीं हो सकता है कि ये जो है ना वो किसी सहाबी की तरफ से हो और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बात ना सुनी हो, लेकिन अपनी कयास की बुनियाद पर कोई बात कर दी हो वगैरह, ठीक है। इसको आप कोट नहीं कीजिएगा प्लीज, ये तरह मैंने बस समझाने के लिए कह दिया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें मेरी कुछ गलती हो, लेकिन मसला तो नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज भी कंफर्म साबित उसको कतई कहते हैं, ठीक है। तो हलाल कतई जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हलाल करार दिया, चाहे वो अपने अल्फाज में करार दिया हो, चाहे वो अल्लाह ताला के अल्फाज में करार दिया, ठीक है। यानी वही मतलू के जरिए से हलाल करार दिया हो यानी कुरान मजीद, या वही गैर मतलू के जरिए से हलाल करार दिया हो यानी हदीस मुबारक, ठीक है। यानी ऐसी हदीस जो मुतवातिर हम तक तवातुर के साथ पहुंची है, उस हदीस के मुताबिक जो चीज हलाल है, अगर तुमने उसको हराम कह दिया, तुम नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद के मुनकिर हो गए, इनकार करने वाले हो गए, यानी काफिर हो गए। और जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने हराम करार दिया था, चाहे कुरान मजीद के अल्फाज में हराम करार दिया हो, चाहे अपने अल्फाज में हराम करार दिया हो, ठीक है, यानी हदीस मुतवातिर तुम तक ऐसे कंफर्म नरेशंस के जरिए से पहुंची है जिसका कि कोई इनकार नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है उसका इनकार करना, अगर तुमने उसको हलाल करार दे दिया तो सब खत्म, सब खत्म, फकद हबित अमल, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दैट सीरियस। जबी जो हमने किताब इसी वाली क्लास के अंदर चंद महीनों पहले पढ़ा के मुकम्मल करी है, ईमान और कुफर कुरान मजीद की रोशनी में, उसके सरवरक के ऊपर, ठीक है, जो आयत लिखी गई थी वो यही आयत थी, बल्कि इस आयत का यही जुज था, वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबित अमल, ठीक है। ईमान और कुफर जिन्होंने अटेंड करी थी उनको उम्मीद है कि याद होगा, जिन्होंने नहीं करी थी उनको चाहिए कि उसको जरा सुन लें। उसके अंदर बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हजरत ने बात एक्सप्लेन करी थी, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैहि ही की वो किताब थी। अच्छा, तो उस शख्स का हर नेक अमल गारत और अकारत जाएगा और वो शख्स आखिरत में बिल्कुल ज़ियाकार होगा, ठीक है, यानी बिल्कुल लॉस्ट, सब कंप्लीटली लॉस्ट। तो बस हलाल को हलाल समझो और हराम को हराम समझो। किस चीज के बारे में बात हुई? अहकामात के बारे में बात हुई, हलाल का हुक्म और हराम का हुक्म, ठीक है। यानी जो हम आम तौर पे समझते हैं ना कि आखिरत का इनकार कर दिया तो वही काफिर है, ठीक है, या तकदीर का इनकार कर दिया तो वही काफिर है, या जो है वो फरिश्तों का इनकार कर दिया तो वही काफिर है, ठीक है, या अल्लाह का इनकार कर दिया यानी एथियस्ट हो गया तो वो काफिर हो गया, और अहकामात का इनकार करना, नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई काफिर वाफिर नहीं होता, है ना, इससे कोई काफिर नहीं होता, सब सब ठीक, ये चलता है, ये चलता है, ये वाला पार्ट चलता है। ओ भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिस तरह अल्लाह के इनकार से काफिर हो जाता है, फरिश्तों के इनकार से काफिर हो जाता है, तकदीर के इनकार से काफिर हो जाता है, किसी किताब के इनकार से काफिर हो जाता है, उसी तरीके से अल्लाह के हुक्मों के इनकार से भी काफिर हो जाता है, अल्लाह के हुक्मों के इनकार से भी काफिर हो जाता है, ठीक है। तो ये है सारे का सारा, और आज के दौर का जो सबसे बड़ा फितना है, और फितने दज्जाल की जो शक्ल जो हदीस मुबारक की रोशनी में हमें समझ में आती है, वो यही है कि इसी तरीके से अल्लाह के हुक्मों के इनकार से बंदा काफिर हो जाएगा, उसका ईमान खत्म हो जाएगा, और वो फितने दज्जाल का शिकार, उसका फितने दज्जाल यही है, यही है फितने दज्जाल, ठीक है, ईमान का फितना। बाकी मारूफ मसाइल जो है इंशाल्लाह फिर वो हम नहीं बल्कि अभी 4 मिनट हैं क्लास खत्म होने के लिए, खत्म है ना, असल में टाइम नहीं हो रहा, हाँ अभी 8:11 हो रहे हैं तो 4 मिनट है, तो मारूफ मसाइल भी शुरू कर लेते हैं। फरमाते हैं कि सूरह मायदा की पहली आयत में बहीमतुल अनआम, यानी पालतू जानवर बकरी गाय भैंस वगैरह का हलाल होना बयान फरमाया गया है, और तीसरी आयत में 9 किस्म के हराम जानवरों की तफसील है, ठीक है, यानी वही खंजीर और दम यानी बहता हुआ दम, खून वगैरह, तो वो 9 किस्म की तफसील थी। मगर इस तफसील से इसके इब्तदाई जुम इस तफसील से इसके इब्तदाई जुमले में इस पूरे बाब का खुलासा इस तरह बयान फरमा दिया है कि इसमें जानवरों के खिलत हुरमत का खासा भी मालूम हो गया और इसका एक मेयार व उसूल भी मालूम। ठीक है, तो पीछे तो जरा स्पेसिफिक्स थे और जरा ज्यादा डिटेल थी, यहाँ पर जो है ना वो एक इजमाली उसूल और खासा ये बयान कर दिया गया 5वीं आयत के पहले जो उसमें इरशाद है, अलयौमा उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, यानी आज तुम्हारे लिए हलाल है सब साफ सुथरी चीज। ठीक है, सब साफ सुथरी चीज। आज से मुराद वो दिन है जिसमें ये आयत और इससे पहली आयत नाजिल हुई। ठीक है, यानी सूरह मायदा की ये सारी आयात जो है ना ये सब एक साथ नाजिल हुई और अरफा के दिन 10 हिजरी, यानी जद्दोजहद 10 हिजरी का यौम अरफा। मतलब ये है कि जैसे आज तुम्हारे लिए दीन कामिल मुकम्मल कर दिया गया और अल्लाह ताला की नेमत तुम पर मुकम्मल हो गई, इसी तरह अल्लाह ताला की पाकीज़ा चीजें जो पहले भी तुम्हारे लिए हलाल थी दाइमी तौर पर हलाल रखी गई और इनके मनसूख होने का इहतमाल खत्म हुआ क्योंकि सिलसिला वही खत्म होने वाला है। ठीक है, वही तो खत्म नहीं हुई, आया तो इसके बाद ही नाजिल हुई, लेकिन वही का जो मगज है ना अल्लाह के अहकाम वो खत्म हो गए, तो उसके ऊपर तकमील दीन का यानी ऊपर से ऐलान आ गया, दीन तकमील तकमील हो गया, नेमत मुकम्मल हो गई। ठीक है ना भाई, क्या मुकम्मल हो गया, कुरान तो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो आने वाली है और कुछ आया। ठीक है, मगज मुकम्मल हो गया, जिस्ट मुकम्मल हो गया, वो क्या है, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के अहकामात। ठीक है ना, इसी वजह से जो सही समझ रखने वाले हैं ना वाकई उलमा अहले हक जो हैं, वो अल्लाह के अहकामात वाली बात को बाकी तमाम बातों के ऊपर फोकियत देते, हत्ता कि उन लोगों को भी जिनके पास अहकामात का इल्म है उनको दीगर उलूम रखने वालों के ऊपर फोकियत देते, दीगर उलूम रखने वालों के ऊपर, हालांकि वो दीगर उलूम भी बहुत जबरदस्त किस्म के बड़े बड़े उलूम हैं, बड़ी मारफत और बड़ी जो है वो यानी कैफियात की बातें और जो है वो छुपी हुई बातें और पता नहीं क्या क्या बातें, बड़ी जबरदस्त किस्म के उलूम होते हैं, वो भी बड़े अहम और बड़े जबरदस्त उलूम होते हैं, लेकिन जो अल्लाह के अहकाम का इल्म है ना ये बस बस असल दीन का जिस जो है ना भाई, हमें इस वही से भेजा गया ना इस दुनिया के अंदर है, हमें दुनिया के अंदर जो है वो यानी कोई ठीक है उसको हम फिलोसफी का लफ्ज नहीं कह सकते, मारफत का इन तो अफजल बहुत बड़ी चीज है और चीजों की हकीकत को समझना और सब कुछ ठीक है, लेकिन आजमाइश किस बुनियाद पर, तो आजमाइश तो सीधा सीधा हुक्म, ये हुक्म है माना, आजमाइश में पूरे हो गए, नहीं माना नहीं पूरे हो गए। तो अगर कोई बिल्कुल किसान है, मोची है, दर्जी है, ठीक है, और उसके पास कोई उलूम मारिफत और कोई इस किस्म की बड़ी बड़ी चीजें उसने नहीं पढ़ी हुई है, कोई उसको दकायक नहीं पता है, कोई उसको जो है वो कभी उसने सुना भी नहीं इस किस्म की चीजें, कुछ समझ में नहीं आता उसको, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? अगर वो अहकामात पे पूरा उतरता है तो फिर वो जन्नत में जाएगा, जबकि इसके बरक्स बड़े दकायक पता हैं और बड़ी जबरदस्त किस्म का लेक्चर देते हैं और लोगों को यानी लोग सर धुनते हैं बयान के अंदर और सुन करके चीजों को, लेकिन अहकामात नहीं हो रहे, किधर जाएगा ये शख्स, किधर जाएगा ये शख्स, ये जन्नत में नहीं जाएगा, सिंपल एज दैट। तो फिर क्या चीज अहम हुई, क्या चीज अहम हुई, ज्यादा अहम क्या चीज हुई भाई, अल्लाह ताला के हुक्म अहम हुए ना। ठीक है, इस जुमले में तैयबात हलाल होने का बयान है और एक दूसरी आयत में इरशाद है, युहिल्लु लहुमुत तैयबाती व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यानी हलाल करता है उनके लिए तैयबात और हराम करता है उन पर खबाइस। तो कुरान मजीद में ये वाहिद जगह नहीं है, और भी जगहों पर इसमें तैयबात के बिलमुकाबिल खबाइस लाकर इन दोनों लफ्जों की हकीकत वाज कर दी। अब इसकी बहुत सारी तफसील आगे मुफ्ती रहमतुल्लाह ने लिखी है, इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम इनको अगली क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैयाकुम।